ऐसी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम नए नियम से मती रचित सुसमाचार का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने इसके 10वें अध्याय के कुछ पदों पर ध्यान किया और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सेवा के लिए भेजते हैं और जब वो सेवा के लिए भेजते हैं तो उन्हें कुछ विशेष निर्देशों के साथ भेजते हैं और उसमें एक विशेष बात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कही कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। फिर हमने ये भी सीखा कि हमें किससे डरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम परमेश्वर से डरो। 28वें पद में हमने सीखा कि उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर से डरना है क्योंकि परमेश्वर हमें दोहरी हानि पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। वह हमें आत्मिक रूप से भी नाश कर सकता है और शारीरिक रूप से भी नाश कर सकता है, जबकि शैतान और संसार केवल हमारे शरीर ही को हानि पहुंचा सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि जब तुम परमेश्वर से डरते हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर से डरो। आज हम इससे अगले विषय पर विचार करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम कुछ आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सहायता मांगें। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें और आपका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो सके। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ मती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 29 से अग्रिम पदों को देखें। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रियों के जीवन के मूल्य को बताते हैं, उनके जीवन का कितना अधिक महत्व है। यहां लिखा है, क्या एक पैसे में दो गौरैयाएं नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर गिर नहीं सकती। तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिने हुए हैं, इसलिए मत डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से भी अधिक मूल्यवान हो। मित्र, ये कैसी सुंदर बात है कि परमेश्वर एक छोटी सी गौरैया का भी ध्यान रखता है, उसकी चिंता करता है। परमेश्वर कहलाने का अधिकार उसी सृष्टिकर्ता का है जो प्रत्येक वस्तु की चिंता कर सकता है, जो प्रत्येक प्राणी की चिंता कर सकता है। एक गौरैया भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं रह सकती। क्या आपने कभी गौरैयों के झुंड को देखा है? मैंने देखा है। उन्हें देखकर मैं इस वचन को स्मरण करता हूं कि इनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसे परमेश्वर पिता ना जानता हो। है ना ये अद्भुत बात? मुझे इससे बड़ा साहस प्राप्त होता है कि परमेश्वर मुझे जानता है, वो मुझ पर दृष्टि रखता है। और जिस प्रकार परमेश्वर गौरैया की गतिविधियों पर ध्यान रखता है, तो वह हमारी भी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी रखता है, क्योंकि हमारा मूल्य गौरैया से बढ़कर है। तब अग्रिम पदों में प्रवेश मसीह बताते हैं कि इसलिए प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। तो यहां पर यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति प्रवेश मसीह को ग्रहण करता है, उसे यह बात सार्वजनिक रूप से बतानी होगी, उसकी घोषणा करनी होगी कि मैंने प्रवेश मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। क्योंकि जैसे दिन के पीछे रात रहती है, उसी प्रकार 23वां पद है। ये पद मुझे प्रोत्साहित करता है, वरन सावधान भी करता है कि मुझे कभी भी कहीं भी प्रवेश मसीह का इनकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रवेश मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझे अस्वीकार करोगे, तो मैं भी तुम्हें पिता के सामने अस्वीकार कर दूंगा। तब अग्रिम पदों में लिखा है, ये ना सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूं। मैं मेल कराने नहीं, वरन तलवार चलवाने आया हूं। मित्रवर, इस पद से शांतिवादियों को आपत्ति हो सकती है, और बहुत से लोग इस पद से परेशान और व्याकुल भी हो सकते हैं। फिर भी जब तक प्रभु यीशु मसीह द्वारा समस्त अधार्मिकता का नाश नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह को शैतान की शत्रुता का सामना करना ही होगा, और उसका परिणाम युद्ध होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने नहीं, वरन तलवार चलवाने आया हूं। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो शैतान उसका विरोध करता है। इस प्रकार शैतान और परमेश्वर के लोगों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब अग्रिम पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के महत्व को स्पष्ट करते हैं। आइए देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। श्रोता, यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रथम स्थान नहीं है, तो हम प्रभु के योग्य नहीं। स्मरण रहे, यदि आप मसीह का होने का दावा करते हैं, तो आपको इन पदों पर ध्यान देना होगा। जब तक हम प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते, वो हमें अपनी सेवा का कोई अवसर नहीं देगा। 39वें पद में प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन के वरदान की चर्चा कर रहे हैं जो उन पर विश्वास लाने के द्वारा प्राप्त होता है। संभवतः प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के कारण आपको मृत्यु का सामना करना पड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपना प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। और तब 40वें पद से आगे हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करे वह नबी का प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी व्यक्ति मानकर ग्रहण करे वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को चेला जानकर ठंडे पानी का एक गिलास भी पीने को दे, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना परमेश्वर को ग्रहण करना है। आपने उन्हें जिस रूप में भी ग्रहण किया है आप उसका प्रतिफल पाएंगे। यदि आपने उन्हें नबी के रूप में ग्रहण किया है तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे। यदि आपने उन्हें धर्मी व्यक्ति मानकर ग्रहण किया है तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे। किंतु यदि आपने उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो आप इसका पूरा पूरा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपका प्रतिफल आपकी विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है। मित्रवर, आपने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में ग्रहण किया है? इसी के साथ हम 10वें अध्याय को समाप्त करते हैं और 11वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। 11वें अध्याय का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह की सेवा जारी है। यूहन्ना के चेलों द्वारा प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया जाना है, उन नगरों पर उल्हाना जहां प्रभु यीशु मसीह ने महान कार्य किए थे, तथा प्रभु यीशु मसीह द्वारा व्यक्तिगत निमंत्रण। मित्रवर, मत्ती रची सुसमाचार की गतिविधि इस अध्याय में भी जारी है। प्रभु यीशु मसीह ने आचार नियमों की घोषणा की, उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने अपने प्रेरितों को भेजा कि वे प्रभु यीशु मसीह के दावों को प्रस्तुत करें, और अब हम उनके मसीह होने के दावों पर इसराइल जाति की प्रतिक्रिया पर ध्यान देंगे। मैं आपको इसके लिए एक ही शब्द में उत्तर देता हूं, तिरस्कार या बहिष्कार। अध्याय के अंत में हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पूर्णता बदलते हुए देखेंगे। सो आइए हमारे साथ देखें मत्ती 11 अध्याय प्रथम पद से। ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वहां से वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। जब बंदीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर उसका समाचार यूहन्ना को दो, कि अंधे दृष्टि पाते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। श्रोता, अब यहाँ पर ध्यान दें, अपने चेलों को बाहर भेजने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी शिक्षा देने और प्रचार करने को बाहर निकल गए। प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श अगुवा थे। लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाना कितना महत्वपूर्ण है, ये उस समय भी था और हमारे समय में भी है। मत्ती के 4 अध्याय के 12वें पद में हम पढ़ चुके हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बंदी गृह में डाल दिया गया था, किंतु उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में समस्त सूचना प्राप्त होती रहती थी, क्योंकि यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह की समस्त गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे और प्रत्येक बात से यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अवगत करते रहते थे। यूहन्ना ये अपेक्षा करता था कि किसी दिन भी बंदी गृह के द्वार खोल दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र अपना राज्य स्थापित करने को आ रहे हैं। यूहन्ना प्रश्न करता है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यूहन्ना का प्रश्न उचित है, तर्कपूर्ण है। वह बड़ी दुविधा में था कि राजा के आने की गति इतनी मंद क्यों है। तब प्रभु ने उसे क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने इस उत्तर को केवल उनके दावों के प्रकाश में प्रस्तुत किया, और इस उत्तर को उनके दावों के प्रकाश ही में समझा जा सकता है। पुराने नियम में यशाया नबी ने मसीह के विषय में प्रत्यक्ष दावे किए हैं। यशाया 35 अध्याय उसके 4 से 6 पदों में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। कि जब वो आएगा तो क्या क्या करेगा। यूहन्ना बपतिस्मादाता मसीह के इन दावों को पहचानता था और प्रभु यीशु मसीह ने इन दावों को पूर्ण होने का दावा किया, जो यूहन्ना के लिए मसीह को पहचानने के लिए पर्याप्त था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर उसका समाचार यूहन्ना को दो, कि अंधे दृष्टि पाते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मेरे मित्र, इनमें से कुछ दावे अभी पूर्ण होना शेष हैं, वे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम आगमन पर वह राज्य स्थापित करने नहीं आए, वह राजा थे, उनमें मसीह होने के प्रमाण विद्यमान थे। उन्हीं बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को बता दिया कि वे यूहन्ना को अवगत कर दें कि ये सब कुछ हो रहा है। यूहन्ना इन दावों को पहचानता था। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की प्रशंसा करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में क्या कहते हैं। उनके जाते समय यीशु भीड़ के लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, कोमल वस्त्र पहनने वाले राजभवनों में रहते हैं। फिर तुम क्यों गए थे? किसी नबी को देखने के लिए? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी बड़े व्यक्ति को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरा मार्ग तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बड़ा कोई भी नहीं। स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। मित्र, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हवा से हिलने वाला सरकंडा नहीं था, वरन वह सरकंडों को हिलाने वाली हवा था। किंतु आज अनेक सेवक, प्रचारक, पास्टर हवा से हिलने वाले सरकंडे के समान हैं। वास्तव में सेवक को यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान सरकंडों को हिलाने वाली पवन के समान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की प्रशंसा जारी रखते हैं और वो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मलाकी नबी के तीसरे अध्याय के प्रथम पद की पूर्ति है। क्या है? देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरा मार्ग तेरे आगे तैयार करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस वचन की पूर्ति है। अनेक बार हमसे प्रश्न किया जाता है कि कौन बड़ा है, इब्राहिम, मूसा या दाऊद? इन तीनों में से कौन बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हैं कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। किंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज में सबसे छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वह मसीह में है और उसने मसीह की धार्मिकता का वस्त्र धारण कर लिया है। बारहवें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। श्रोता, इस पद की व्याख्या करना कुछ कठिन है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने पर हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। इसका संकेत आत्मिक शक्ति की ओर है। अनेक लोगों ने स्वर्ग राज्य में प्रवेश प्राप्त कर लिया है और वे मसीह यीशु के शिष्य बन गए हैं, और इसके लिए आत्मिक बल, साहस, सामर्थ्य तथा दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। उन्होंने सताव और क्लेश भी सहा है। जिनमें आत्मिक बल की कमी है, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। 13वें पद में प्रभु जी कहते हैं, क्योंकि सब नबी और व्यवस्था यूहन्ना के आने तक भविष्यवाणी करते रहे। यदि तुम इस बात को मानना चाहो तो यही एलिया है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। सो हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मलाकी नबी के तीसरे अध्याय के प्रथम पद में उल्लेखित संदेश वाहक की पूर्ति है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इसराइल ने मसीह यीशु को उनके प्रथम आगमन पर स्वीकार किया? इसका उत्तर है नहीं। सभी नबियों ने और व्यवस्था ने मसीह के विषय नबुवत की है। यदि यूहन्ना मलाकी और यशायाह नबी की पूर्ति है तो इस अग्रदूत की साक्षी पर विश्वास करना चाहिए। यदि यूहन्ना मसीह का अग्रदूत है तो यूहन्ना के बाद जो आने वाला है वह मसीह है। मसीह के प्रथम आगमन पर एलिया उनका साक्षी है, दूसरे आगमन पर भी वह उनका साक्षी है। दूसरे आगमन पर मसीह यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को आएंगे। जिसके पास अभिषिक्त कान हैं, वे इसको सुनकर विश्वास ला सकेंगे। 20 से 24 पदों में प्रवेश मसीह कुछ नगरों को उलहाना देते हैं। यहां खुराजीन और बैतसैदा नगर हैं। उत्तरी क्षेत्र में ये कफरनहूम के निकट दो नगर थे। प्रभु जी ने यहां महान आश्चर्य कर्म किए, किंतु उन्होंने प्रवेश मसीह को अस्वीकार कर दिया और इसलिए प्रभु जी ने नगरों के विरुद्ध दंड घोषित कर दिया। और 22वें पद में प्रभु जी ने कहा, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। श्रोता, जब किसी व्यक्ति को या किसी देश को, किसी राष्ट्र को परमेश्वर की ज्योति प्राप्त होती है, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसका उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ना तो सदोम और ना अमोरा में और ना सूर और सैदा में कोई सेवा की, ना अपना मुख्यालय बनाया, ना कोई आश्चर्य कर्म किया, किंतु ये सब कार्य उन्होंने खुराजीन तथा बैतसैदा में किए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें उस ज्योति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रदान की है उत्तरदायी ठहराते हैं। और वो कहते हैं कि सूर और सैदा की दशा न्याय के दिन तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। और यही बात वो कफरनहूम के विषय में कहते हैं कि न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। मित्रवर, आज हमारे समय में भी अनेक लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की ज्योति प्राप्त हुई है, किंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वे अपने दंड के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। और तब हम 25 से 30 पदों को देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर रखी और बच्चों पर प्रकट की हैं। हां पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। श्रोता, स्पष्ट है कि वचन सुनने और आश्चर्य कर्म देखने या उनका अनुभव कर लेने भर से ही किसी का उद्धार संभव नहीं। उद्धार तो संभव है पश्चाताप करने या मन फिराने के द्वारा। 25वें पद में एक वाक्यांश हम पढ़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। ये वाक्यांश हमें वापस उत्पत्ति की पुस्तक के 14वें अध्याय के 19वें पद की ओर ले जाता है, जहां परमेश्वर को इस नाम से संबोधित किया गया है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। अनेक बुद्धिमानों की समझ में ये बात नहीं आ सकी, किंतु अनेक ना समझ बालकों ने इस सत्य को पहचान लिया है। अब हम देखेंगे कि प्रवेश मसीह एक नया तथा व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र जारी करते हैं। 28वें पद में वो कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। श्रोता, ये भाषा इस समस्त अध्याय में प्रयोग की गई भाषा से भिन्न है। ये तूफान के बाद शांति जैसा है, अंधकार से ज्योति में आने जैसा है। ये प्रवेश मसीह द्वारा नया संदेश है। वे अब सामूहिक देशों से हटकर व्यक्ति की ओर मुड़ रहे हैं। ये निमंत्रण स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं है, ये व्यक्ति को व्यक्तिगत मोक्ष के विश्राम का निमंत्रण है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारा बोझ तुम पर से हटा लूंगा। ये अधर्म का बोझ है जिसे प्रवेश मसीह हटाने के लिए कहते हैं। ये पद पापियों के उद्धार के संदर्भ में है। ये छुटकारे का विश्राम है, पापी का व्यवहारिक पवित्रीकरण है, ये मानसिक और हार्दिक विश्राम है, आपकी अभिलाषाओं, लालसाओं, चिंताओं से विश्राम है। यदि आपने स्वयं को प्रवेश मसीह के हाथों में सौंप दिया है, तो वह स्वयं आपको वहां पहुंचाएंगे, आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। अब इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे और अपने वचन की रक्षा करें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।